أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی یسر ولا تیسر وتمم بالخیر. حسن المسلم نام بھی اتنا پیارا اور دعائیں بھی اتنی ہی خوبصورت. آج ہم اس میں سے صبح و شام کی دعائیں کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں یا صبح ہوتی ہے تو یا شام ہوتی ہے، اور اسی طرح سے پھر زندگی تمام ہوتی ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. تو صبح اور شام کے اذکار اور دعائیں، یہ وہ سنت ہے کہ جس کو دوبارہ تھامنے کی ضرورت ہے. کچھ عرصہ پہلے سے آپ دیکھیے تو لوگ فجر کے بعد قرآن پاک پڑھنے کے بھی عادی تھے، بہت ساری نیکیاں، پنسورہ اور اسی طرح کی چیزیں، لیکن صبح و شام کی دعائیں بہت زیادہ کامن نہیں تھی. آج سے 15-20 سال پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ہماری نانیاں دادیاں عموماً جو بھی کرتی تھیں وہ اس سے ادھر ادھر ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ اردو زبان میں اس کتاب کا آنا، جس کو اس وقت آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، میرے گمان کے مطابق اس نے صبح شام کی دعائیں بھی ہمارے گھروں میں متعارف کروا دیں. ہر ایک کا اجر اللہ کے پاس ہے، ہمیں کسی کو کچھ ثابت تو نہیں کرنا، لیکن میں نے پہلی دفعہ اس بک میں سے ہی صبح شام کی الگ سے دعاؤں کو دیکھا اور مجھے لگا کہ یہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے پیارے نبی کی پیاری دعائیں بھی ہوتی تھیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں تھوڑی سی مختلف بھی تھیں. تو بہرحال ہم سب نے ابھی سوچ کے ساتھ اس کو مانگنا ہے اور سیکھنا ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس کو سنت کو ماننے کا اجر ہمارے ذہنوں میں رہے گا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پروٹیکشن ہے. آج کل خاص طور پہ وبا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ماسک بھی ہیں اور اسی طرح سے سینیٹائزرز کا بھی استعمال عام ہے. تو بالکل اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پروٹیکشن اور ہمارے تحفظ کی ایک بہت ہی پیاری چیز یہ دعائیں ہیں، جس کو ہم مانگیں گے بھی اور مانگ بھی رہے ہیں. تو صبح اور شام کی دعائیں کب، کہاں، کیسے پڑھی جائیں، یہ پہلے بتا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں کلیئرٹی ہو. تو اس میں یہ ہے کہ اسلام میں شام کے وقت کو اگر لیں نا تو عصر کے بعد سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی رات کی طرف انسان سلولی سلولی جاتا ہے. تو اگر آپ عصر کی نماز کے بعد سے ہی، یا پھر اس کے بعد آف کورس مغرب، عشاء، اینی ٹائم، ایسی چیزوں میں کوئی سیٹ رولز نہیں ہوتے کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو الجھا کر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمیشہ اہتمام رکھیے، جو وقت آپ کا فوکسڈ ہو کر بات کرنے، سننے، پڑھنے کا ہو اس کو لیجئے، اور شروع شروع میں آپ بک میں سے دیکھ کر پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی بعد میں آپ کو پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی بات ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں تو ان بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیے، کیونکہ بچے عموماً وہی کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ کرتے ہیں. تو اگر ماں پڑھتی ہیں، اور عموماً میں دیکھے خواتین پڑھتی ہیں، مردوں کا شاید مصروفیت کا سا وقت ہوتا ہے تو کبھی کبھی ان کی یہ چیزیں چھوٹنے لگتی ہیں. صبح و شام کی دعاؤں میں آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے، اور آپ ان دعاؤں کی فضیلت جانے نہ جانے اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں عموماً کسی بھی کام کے کرنے کا اگر کہا جائے یا اس کا اشارہ دیا جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا ثواب ہے، یعنی وہ ثواب کو تولنا اور ناپنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں سوچنا، آپ نے اس کام کو اس سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں تو دوا کھاتے ہو کہ یہ تو نہیں پوچھتے اس کا ثواب کتنا ہے، یہ پوچھ لیتے ہیں پیسے کتنے ہیں، کتنے کی آئے گی دوا. تو صبح شام کے اذکار کا قرآن پاک میں کئی بار حکم ہے. ہی نہ تم سون، ہی نہ تخیون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے بھی ایک دو دعائیں ہیں جو بھی آپ سیکھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے. اسی طرح سورت نحل آپ کھولتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جانوروں کو چرانے کے لیے لے جانے کے ناطے سے کچھ چیزیں ملتی ہیں. تو جو بھی کام کرے نا اس کو ثواب اور اس کے دوسرے فوائد سے تھوڑا سا اوپر کر کے بھی کرے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صبح و شام کی دعائیں یہ ہمیں کیسے سیکھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو ہر قسم کے مصائب کے مقابلے میں हमारी इंश्योरेंस का काम करती हैं, आज की ज़ुबान में ले ले। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से चार गुलामों को आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है जो नमाज़े फजर से तुलुए आफ्ताब तक अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। और इसी तरह से मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना चार गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है जो कि नमाज असर से ग़ुरूब आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करें। अब देखिए, यहाँ से पता चलता है कि सूरज ग़ुरूब होने तक शाम की दुआओं का वक्त रहता है ना। तो बहरहाल हमने इसमें से अपने लिए अमल की बात जो लेनी है, आप देखिए कि हदीस ये अबू दाऊद की है 3667। पहली बात देखिए कि एक गुलाम भी कितने का होता था, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ख़ास तौर पर हज़रत बिलाल को कितने माल के इवज़ आज़ाद कराया था, हज़ारों में होते थे उस वक़्त भी दिरहम और दिनार की कीमत के हिसाब से। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो हर जुमे को एक गुलाम को आज़ाद करवाते थे। तो एक कीमती कमोडिटी थी उस दौर में, एक किस्म का कैपिटल था गुलाम। जैसे आज कोई मुश्किल पेश आए तो लोग सोना चांदी अपना बेच लेते हैं ना, इसी तरह से उस दौर में जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो वो गुलामों को बेचकर अपना फ़ायदा कर लेते थे, और अगर ना भी बेचते तो गुलामों से पैसे कमाते थे, यानी जॉब्स गुलाम करते थे, दूसरों की खिदमत करते थे और फिर वो अपने ओनर्स को उसके पैसे देते थे। यानी कोया कि मल्टी पर्पस चीज़ें होती थी, जैसे आज मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, बाज़ लोग अपनी चीज़ों को किराए पे दे के पैसे लेते हैं, इसी तरह लोग अपने गुलामों से जॉब्स करवाते थे और वो पैसे सारे जो थे वो मालिक को जाते थे। तो गुलाम को आज़ाद करा देना, चार गुलाम हज़ारों में बनते हैं, यानी तकरीबन अगर 10,000 की वो एक चीज़ सामने रखें तो 40,000 का फिगर सामने आता है। हमें इन सारी बातों से जो लेना है वो ये है कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने अगर आपको मुझे इस चीज़ की तौफीक दी है जिसमें हमारा लगता लगाता भी कुछ नहीं, लेकिन अगर हम इससे फ़ायदा उठाकर अपने नामे अमाल को भारी कर लेते हैं तो ये अल्लाह की रहमत से हमारे लिए होगा। और ये वहाँ इस वक्त बैठना और अल्लाह का जिक्र करना, ये जिक्र कुछ भी हो सकता है, और ऑफ़ कोर्स जो मसनून जिक्र अभी हम सीखने लगे हैं, अगर आप ये करते हैं तो अल्लाह से दुआ भी करके नियत भी रख के आप इसका अजर ले सकते हैं। हम में से किसके पास इतना माल है कि रोज़ चार गुलाम आज़ाद करें? तो ये चीज़ें छोटी छोटी नेकियों के मौके बन जाती हैं जब इंसान इसको इस्तेमाल करता है। फिर इसी तरह सही तरगीब व तरहीब हदीस नंबर 662 है, जो शख्स सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े वो शाम तक जिन्नों से महफूज हो जाता है, और जैसे शाम के वक्त पढ़े वो सुबह तक इनसे महफूज हो जाता है। आयतुल कुर्सी किसको नहीं आती, सभी को आती है ना, अक्सर पढ़ते भी हैं, लेकिन शऊर के साथ अल्लाह ताला के नामों पे उसकी सिफात पे गौर करते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। तो इसी शऊर के साथ अभी आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं, फिर इसका तर्जुमा भी है हमारे पास, और इस पे गौर व फिक्र करते कराते हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ हमारे सामने आ गई। तो ज़रा सा मिलकर आयतुल कुर्सी पढ़िएगा।
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति वमा फिल अर्ध मन ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
आयतुल कुर्सी जो पैदा होने से लेके अब तक हम लाखों बार सुन के चुके, और इसके फजाइल और इसकी खूबियां जानना किसी के लिए भी कोई नई बात नहीं है। हम जब छोटे थे तो तब हमारी माएँ, हमारी नानियाँ हमें ये पढ़ पढ़ के सुनाती थी, और जब फिर हम खुद बड़े हुए तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद है कि अगर आयतुल कुर्सी ना पढ़ी हो तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आज की ज़ुबान में कि सीट बेल्ट ना बांधी हो। और इस तरीके से लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। नबी सल्लम पे अल्लाह ताला अपनी रहमतें फरमाए कि जिन्होंने हमें इतने खूबसूरत अस्कार सिखा दिए कि फ़ायदा सारा हमारा अपना है और आखरत का अजर और भी ज़्यादा प्लस है। आप नहीं पढ़ते तो ना पढ़िए, लेकिन फिर हम उसके बारे में गिला नहीं कर सकते कि हम इनसिक्योर क्यों हैं। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि इस हदीस में जो बात है कि आयतुल कुर्सी जो पढ़ लेता है वो शाम तक महफूज हो जाता है, तो हिफाजत तो हमारी है। हम अपनी हिफाजत के लिए तो सब कुछ करते हैं। सर्दी हो तो हम जैकेट क्यों पहनते हैं? अपने लिए पहनते हैं। तो क्या पता चला कि हमें सवाब के हिसाब से भी पढ़ना है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए भी इसको हमने पढ़ना है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से इंसान अल्लाह ताला के नामों पे अगर गौर करे तो क्या बनता है, इसको सामने रखते हुए ज़रा सा इसका तर्जमा सुनिएगा। अल्लाह वो ज़ात है जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो जिंदा और जावेद हमेशा कायम रहने वाला है। इसे ऊँग आती है ना नींद, इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है वो जो इसके हाँ इसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके? वो इन चीज़ों को जानता है जो इनके सामने हैं और जो इनके पीछे हैं, और वो लोग इसके इल्म में से किसी चीज़ पर दस्तरस नहीं रखते। ताहम जिस कदर वो खुद चाहे इसकी कुर्सी हावी है आसमानों और ज़मीन पर, और नहीं गिरां गुजरती यानी बोझल होती इसे हिफाजत इन दोनों की यानी ज़मीन और आसमान की। वो बुलंद मर्तबा अजमत वाला है। आप देखिए कि आयतुल कुर्सी का पढ़ना सुबह शाम की दुआओं में गोया के हमें शयातीन और इंसानों के शर से बचाना है। आज लोग कितने ही परेशान हों, अपने आप को कितना ही गैर महफूज करें, लेकिन इसके बावजूद देखिए उनको अपनी ज़रूरियात के लिए घरों से निकलना होता है। जहाज़ का सफ़र कितना इनसिक्योर क्यों ना हो, लेकिन जहाज़ों में बैठना होता है। लेकिन अगर आप आयतुल कुर्सी जिसमें अल्लाह ताला के 25 नामों का जिक्र है इसको पढ़ लेते हैं तो कितना फ़ायदा होता है। इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लम की एक और रिवायत है कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला का इस्मे आज़म है, और हदीस में है कि वो इस्मे आज़म जिस नाम की बरकत से जो दुआ अल्लाह ताला से मांगी जाए अल्लाह ताला वो कबूल फरमाते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसको अपनी आदत रखिए, सुबह शाम के साथ साथ नमाज़ों में हर नमाज के जो फ़र्ज़ हैं उसके अंदर जो पढ़ने की आपने बात देखी, तो बंदा मोमिन तो सारा ही दिन अपने आप को अल्लाह ताला की हिफाजत में रखता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि अगला अमल आयतुल कुर्सी को अगर पढ़ने और सुनने के बाद हम देखें तो इस पर गौर व फिक्र है, तदब्बुर है। इसके एक एक नाम को देखिए, और कुछ ना हो तो सिर्फ इसकी तफसीर सुन लीजिए, जान लीजिए, इसकी इन डेप्थ स्टडी कर लीजिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि एक एक आयत के ऊपर पूरी पूरी जिल्दें लिखी हुई हैं किताबों की। आयतुल कुर्सी आपको पूरी अस्मा व सिफात और इसी तरह अस्माए रबूबियत, अस्माए अलूहियत और इसी तरह तौहीद अस्माए सिफात की तरफ इशारे देती है। थोड़ा सा अपना वक्त खाली करते हुए हमें अपने रब के बारे में ज़रूर जानना है कि आखिर क्या वजह है कि इन नामों को पढ़ते और सुनते वक्त ही शैतान उससे भाग जाएं। तो इंशाल्लाह हमारे लिए जो पहला अमल इसमें दिखा वो आयतुल कुर्सी है। अपनी उंगलियों पर रख लें, सुबह भी और शाम भी एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अभी तो हमने पढ़ ली, नियत कर लीजिए कि हमने अपने अपने इलाके के मुताबिक या तो शाम की पढ़ी या सुबह की पढ़ी। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, जो शख्स आखिरी तीन कुल कुल काफ से मोटी काफ से होता है 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम के वक्त पढ़े, यह अमल इसके लिए दुनिया की हर चीज़ की किफालत के वास्ते काफ़ी हो जाता है। कोई है ऐसा कि ये खाना खा लो तो इसके बाद कुछ ना खाओ, ये कपड़े पहन लो तो इसके ऊपर कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं? सिर्फ 3 सूरतें, और जिसको आप और मैं मुअव्विज़ात कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरत अल-अख़लास, सूरत फलक और सूरत नास। और ये जो रिवायत है ये 5082 अबू दाऊद की रिवायत है। तो तीनों सूरतें जिसको तीनों कुल भी कहते हैं लोग, इसको आइए शऊर के साथ मांगते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
آپ دیکھیں کہ اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانے کی بات ہو تو پھر اس چیز میں تحفظ کیوں نہ ہو. ویسے تو آپ نے ان صورتوں کو بہت دفعہ پڑھا سنا ہوا ہے, لیکن اس وقت آپ میں انشاءاللہ اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس پہ غور و فکر بھی کریں گے اور اس کو پڑھیں گے بھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہماری حفاظت کے لیے رکھ دیں. تو سورۃ الاخلاص, آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ ہی کوئی اس کا ہم واللہ ہے. یعنی اللہ کے ایک ہونے کو اس صورت کے اندر اتنی خوبصورتی سے پرو دیا گیا کہ اب کسی کو بھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. دوسری بات یہ کہ بعض روایت کے مطابق 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا اجر پورے قرآن کے پڑھنے کے اجر کے برابر ہے. یاد رکھیے, اجر اور چیز ہوتی ہے, بات اور ہے, لیکن یہ حدیث جو ہے اس میں جو مفہوم ہے نا 3 دفعہ پڑھنا, کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا بنیادی حصہ توحید سے متعلق ہے. آپ اگر پورے قرآن کے مضامین کو 3 حصوں میں بانٹے تو اس میں ایک حصہ صرف توحید کا بیان ہے اور سورۃ اخلاص میں پوری کی پوری توحید ہے. نام کتنا خوبصورت ہے نا, ہم اخلاص کہتے ہیں, سورۃ الاخلاص, اخلاص افعال کا وزن. دوسری بات, اللہ بے نیاز ہے, آپ بھی بے نیاز ہو جائیے. کیوں لوگوں کی نیاز مندیاں مانگتے ہیں اور پھر مایوس ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو دے کیا سکتے ہیں؟ کوئی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لوگوں سے نظریں اٹھا دیجئے. اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی اگر ہمارا کوئی کام کرواتا ہے نا تو پیچھے سے ہاتھ اسی کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود نہیں آتا, کسی کو بھیج دیتا ہے. بالکل اسی کیفیت کے مطابق اگر آپ کے میری زندگی میں کوئی خیر کے پہلو ہیں تو مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ڈال دیے. آپ خالص ہوتے جائیں, اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوتی جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی اولاد کوئی نہیں, بیوی کوئی نہیں, کوئی اس کا ہم پلہ نہیں. آج موجودہ کرسچینٹی کے سارے نظریات کا ابطال یا اس کا رد صرف اس ایک صورت میں, نہ اولاد ہے یعنی جیزس از ناٹ سن آف گاڈ, اور بیوی کوئی نہیں تو میری کے بارے میں تو کچھ کوئی کہہ نہیں سکتا. تو لہٰذا ان صورتوں کا ترجمہ بھی کافی ہے, ایک ریورٹ انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی جو وجہ بتائی, انہوں کو کہیں بھی ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی سورۃ الاخلاص ملی تو انہوں نے جب اس کا انگلش ترجمہ پڑھا تو ان کو تو ڈفرینٹ لگا, اور انہوں نے اس کے بارے میں جب ریسرچ کی تو کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ ایک ہے, اس کی اولاد نہیں, اس کی بیوی کوئی نہیں, تو پھر اس پہ ریسرچ کرتے کرتے بالآخر اسلام کی بیسکس کو سمجھ گئے. تو اللہ نے صرف سورۃ اخلاص کو ہی ایک ذریعہ بنا دیا لوگوں کی ہدایت کا, تو ہمیں تو اس سے بہت ہی پیار ہونا چاہیے. معاویہ بن معاویہ نام کے صحابی اسی سورت کو ہر رکعت میں ضرور پڑھتے تھے. لوگوں نے گلہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ کے مقرر کردہ امام جو ہیں وہ ہر رکعت میں یہ ضرور پڑھتے ہیں. تو آپ نے بلا کر پوچھا کیوں؟ کہا مجھے اس سورت سے پیار بہت ہے, محبت کی بنا پہ. तो आपने फरमाया कि तेरा ही सूरत से प्यार या मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी, तो आप में भी तो पढ़ते ही हैं, पर प्यार की वजह से या आदत की वजह से। और कई भोले भाले लोग तो ऐसे भी हैं कि उनको ये पता कि पढ़नी ही सिर्फ यही है, तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर अपने आप को हमेशा बहुत ही ओपन रखिए, और जो भी काम करें, जो भी पढ़ें, उसको बेहतरीन तरीके से लीजिए। हज़रत उबई बिन काब फरमाते हैं कि मुशरिकों ने आपसे कहा कि अपने रब का हमसे नसब बयान करो, तो अल्लाह ताला ने ये सूरत उतार दी कि आप इन्हें कह दें कि वो अकेला है। यानी ये सूरत की शान नज़ूल है। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि समद, यानी हमें समद का लफ्ज़ थोड़ा सा नया लगता है ना, तो समद कौन है? असमद वो है जो अपनी सरदारी में, अपनी शराफत में, अपनी बंदगी और अजमत में, अपने इल्मो अमल में और अपनी हिकमत और तदब्बुर में सबसे बड़ा हुआ हो। ये सिफतें सिर्फ अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक में ही पाई जाती हैं। समद, अब्दुस्समद, बहुत प्यारा नाम है, छोटा सा नाम है, और क्या पता है कि इस नाम की वजह से ही सरदारी आ जाए और बेनियाजी आ जाए। तो अल्लाह ताला की नामों का असर तो इंसान के ऊपर होता ही है। इस तरह कुफुवन अहद, कुफु क्या होता है कि ना कोई इसके मुशाबे है और ना बराबर, और इसकी मिसाल कोई चीज़ नहीं। ये तिर्मिज़ी में किताबो तफसीर में, कफ भी तो एक कैफियत है ना, शादी में निकाह में कफ होना चाहिए, यानी बराबरी, जैसा लड़का वैसी लड़की, जो उसका स्टेटस वो इसका स्टेटस वगैरह। लेकिन यह है कि यहाँ मुराद है कि अल्लाह ताला का कोई हम मिसल है ही नहीं, इसीलिए फिर अमूमन जगहों पे इसका तर्जमा बीवी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए अगली दो सूरतें जिसको फलक और नास कहते हैं, इन दोनों के मजमुए को मुआवजा तयीन कहते हैं। तीनों को कहते हैं मुआवजात, जमा का सीगा ना, मुआवजातुन एक, मुआवजात बहुत सारी बना देने वाली सूरतें, और मुआवजा तयीन तस्निया है आखिरी दो सूरतें। तो इसमें भी आप देखिए कि मुख्तलिफ अशिया से अल्लाह ताला की पनाह मांगने का जिक्र है, दोनों का मजमून बाहम मिलता है, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर मुआवजा तयीन कहा जाता है। यानी वो सूरतें जिन्हें पढ़कर अपने परवरदिगार से पनाह मांगी जाती है। फलक का तर्जमा सुन लें, आप कह दीजिए कि मैं पनाह चाहता हूँ सुबह के रब की, इस चीज़ के शर से जो इसने पैदा की, और अंधेरा करने वाले के शर से जब वो छुप जाए, और गिरहों में फूकने वालियों के शर से, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। आप देखिए कि सूरत अखलास तो अलग से थी ना, अभी इसको अलग से भी हम पढ़ते हैं ताकि आप इसकी चीज़ों को महसूस करें, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में क्या है, बिरब्बिल फलक एक ही बस नाम है। शर कितने हैं? तीन, मिन शर्री मा खलक, मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रिन नफ्फासाती फिलुकत, और चौथी चीज़ है मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। यानी अल्लाह ताला की एक सिफत लेकर तीन तरह की या चार तरह की चीज़ों से पनाह मांगी। अब ये नफ्फासात क्या हैं? मुंह से ऐसी फूंक मारना जिसमें कुछ लुआब की आमेजिश हो, और बाज़ कहते हैं इसे मुराद फूक है। अक्सर दम, झाड़, फूंक जो होती है वो फूके मारने ही से होती है, और उस दौर में भी इसका बहुत रिवाज था, और आपने फरमाया कि क़यामत के करीब दोबारा लोग जादू टूने और इस तरह की झाड़ झंकार में आ जाएंगे। फिल उक़द, उक़दतुन क्या है? अगर आप इस लफ्ज़ को देखेंगे तो फिर आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ्फासाती फिल उक़द। तो उक़द क्या है? उक़दतुन की जमा है, इसका मानी होता है गिरा, और इसका सबब क्या है कि जब जादूगर जादू के अल्फाज पढ़ना शुरू करता है तो एक धागा पकड़ लेता है, वो इस धागे में एक गिरा लगाता है, इसीलिए फिर उकदा का लफ्ज़ इसी से है। और अगर आगे हसद को देखें तो हसद का मानी या उसकी तारीफ़ क्या है कि इंसान किसी के पास कोई नेमत देख कर ये ख्वाहिश करे कि इसके पास से वो नेमत ज़ायल हो जाए, ख्वा वो इस नेमत को छीनना, यानी वो इस नेमत को छीनना हो तो वो इस नेमत को छीन ले, इसीलिए अल्लाह ताला ने हसद से पनाह मांगने का हुक्म दिया। तो हसद क्या है कि आपके दिल की जलन कि उसको अल्लाह ने दिया है मुझे नहीं दिया, या मुझे दे ना दे उससे छिन जाए। बहुत ही चोर दरवाजे से हसद दिलों में रहता है, इसलिए इसको ढूंढ ढांड के निकाल के इधर उधर फेंक दीजिए, वरना हो सकता है कि नेकियां जिंदगी भर की जो हैं उनको आग लग जाए। हदीस में आता है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। तो इसलिए हमेशा अपने दिल को खाली रखें। हमारे बहुत सारे जुमले, टॉन्ट, तंज और इसी तरह की चीज़ें हसद की वजह से होती हैं। हम समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन हमारे दिलों में दूसरे साथी के बारे में हसद होता है। आप देखिए, कोई किसी की तारीफ करे और आगे से कह देना, नहीं इतना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और भी बहुत है। बस ये जुमले साबित कर रहे हैं, इसके अंदर से जो बू आ रही है ना, वो हसद की बू आ रही है और गुना बेलज्जत की बात है। किसी का कुछ जाए ना जाए, आप खामखा अपने अमल को बर्बाद करें तो अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह मुझे बेनियाज कर दे, समद बना दे, कि जैसे किसी की कोई चीज़ देखी ही नहीं। अमूमन जब लोग अपनी चीज़ों का बहुत इजहार करते हैं, एक्सपोजर करते हैं, खूबसूरती का, खानों का, बच्चों की तस्वीरें, कहीं गए घूमने गए, उधर गए, तो लोग फिर हसद करते हैं। हसद क्या है? हराम है। रश करना जायज़ है। हसद क्या आता है कि इंसान किसी के पास कोई नेमत देखकर ये ख्वाहिश करे कि इसके पास से तो वो नेमत जायल हो जाए, ख्वाह इसको वो नेमत ना मिले। ठीक है, इसके बरक्स रश क्या है कि अगर इंसान किसी के पास कोई नेमत देखकर ये तमन्ना करे, यानी इसके पास भी रहे मुझे भी मिल जाए, तो इसको रश कहते हैं। तो इस शऊर के साथ जरा सूरत फलक की तिलावत कीजिए।
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
एक बार फिर पढ़िए जरा सा रुक रुक के हरायत के एंड पे।
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
जी, जब खुद भी पढ़े ना शाम को, तो इसी तरह हर आयत पे रुकें। आप देखिए कि हमारा माइंड जो है ना, वो बहुत स्लोली चलता है कुछ चीज़ों पे। जब हम उसको एक आदत के तौर पर, एक अपने रूटीन के तौर पे पढ़ देते हैं ना, तो वो चीज़ दिल पे नहीं आती। हर आयत पे इस तरह रुके, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर 3, 2, 3, 4 सेकंड, जितना भी आपके पास टाइम हो, फिर करें, फिर अगला जुमला पढ़े, फिर उससे आगे चले। तो इससे आप फील करेंगे कि आपका दिल खुल रहा है और सोचने और समझने की ताकत आती है। इंसान फिर उसके बाद अपने आप को उस चीज़ के इर्द गिर्द रखता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि सूरत फलक के बाद नास, आखिरी सूरत। जैसे बंदा सारा कुरान पढ़ के आखिरी सीढ़ी पे पहुंचता है ना, तो आप जानते हैं कि आखिरी सीढ़ी मंजिल के बहुत करीब होती है। तो सूरत नास जब आप पढ़ें सुबह में और शाम में, तो उस वक़्त पहले तो इसको महसूस करें। पीछे 113 सूरतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी, बहुत छोटी छोटी भी, मक्की भी, मदनी भी, लेकिन सूरत नास को अल्लाह ने आखिर में क्यों रखा? क्योंकि मोमिन के लिए हर लम्हा, हर नुक्ता सोचने का नुक्ता होता है। तो आप देखेंगे कि फलक की तरह नास में भी पनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ था, उसका तोड़ इन 11 आयतों में था। वो 11 गिरहें और जो गांठें थी वो खुलती गईं हर आयत के साथ। तो यहाँ हम थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे, पहले इसके तर्जमे को देखकर। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवसविसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति नास। आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, वसवसा डालने वाले शैतान से जो आंखों से ओझल है, जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में, जिन्नों में से और इंसानों में से। आप देखिए कि इसमें आपने पहली चीज़ शायद नोट की है कि नहीं, कि सूरत नास और फलक और अल्लाह ताला की तीन सिफात का तस्करा है। उधर क्या था, सिफत एक थी, चीज़ें चार थीं जिससे पनाह मांगी गई। इधर क्या है, अल्लाह ताला रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। पहले तो देखिए क्या ये आयत ऐसे ना होती, अगर हम अपनी अक्ल से सोचें, ऑफ कोर्स ऐसी होनी नहीं थी, हम तो सिर्फ इस पे गौर व फिक्र और तदब्बर के लिए ये बात कह रहे हैं ना। कुल औज़ु बिरब्बिन मलिकिम व इलाहिन नास, क्योंकि नास का लफ्ज़ कॉमन है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, फील करो, फील द रिलेशन, वो मेरा रब है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा इलाह है। फिर एक चीज़ से बस बना, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मुझे लगता है इसको कुरान पाक के बिल्कुल एंड पे लाने की वजह क्या है, कि इंसान को वसवसे से जितना डरना है ना, उतना किसी और से नहीं डरना। कि रब की तीन सिफतों को बीच में लाकर जिस चीज़ से पनाह मांगी, तो यकीनन वो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ होगी ना। पता क्या चला, कि वसवसा ही वो चीज़ थी जिसके ज़रिए से इबलीस ने आदम और हव्वा को जन्नत से दूर किया। आज भी शैतान सबसे पहले हमारे दिलों में वसाविस डालता है, हत्ता कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में वसवसा, फिर नेकी का काम करने के बारे में वसवसा, जो उस तरफ बुलाएं उनके लिए वसवसा। तो वी नीड टू टेक अ वेरी क्विक एक्शन। अगर आप चाहते हैं आप अपने रब के साथ ताल्लुक महसूस करें, तो पहले शैतानी वसवसात से बचिए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। लफ्ज़ रब ज़र्रे को कमाल तक पहुँचाने वाला, तरबियत करने वाला, रब्बा यु रब्बी तरबियतुन, एक ही लफ्ज़ है ना। फिर उसके बाद आप देखिए कि मलिकिन नास में मालिक है, मलिक भी आता है और मालिक भी आता है लफ्ज़। फिर इसी तरह से आप देखिए इलाहिन नास, यानी सबका माबूद। ख्वाह इंसान किसी की इबादत करें, लेकिन तमाम लोगों की इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह वाहदहु ला शरीक है। लोग करोड़ों बुतों को पूज लें, करोड़ों चीज़ों को पूज रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बेनियाज है। फिर इस तरह आप देखिए मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। खन्नास क्या है, खनासा से पीछे हट जाने वाला, छुप जाने वाला, शैतान का नाम है असल में खन्नास। कभी भी वहाँ नहीं टिकता, जैसे बच्चे शरारत करके भाग जाते हैं ना, क्या आप तमाशा देखते हैं दूर खड़े होकर, जैसे किसी की गाड़ी का टायर पंक्चर किया, हवा निकाल दी और छुप के देखने लगे, जब कोई आएगा देखेगा वो गाड़ी नहीं चली, आएगा तो ये हंसेंगे कि देखा हमने कितना आज फूल बनाया। शैतान भी कुछ ऐसे ही काम करता है। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, तो युवस्विस में वसवसा है, किसी बुरे ख्याल या गुनाह के काम को दिल में डालना। शैतान इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मासीयत को इनका करता है, यानी गुनाह करो कुछ नहीं होता, एक मिनट की बात है, इट्स ओके, वंस अ वाइल, सैटरडे है, खुशी का मौका है, गम की बात छोड़ो, पता नहीं कैसे कैसे शैतान वसवसे डालता है, और मासीयत को खुशनुमा लिबास पहनाकर इस काम की तरफ राग़िब करता है, यानी नाफरमानी को खूबसूरत करता है। आप देखिए ना, कोई फिल्थ ट्रैश इसके ऊपर खूबसूरत सा लेबल लगा के तो रख दे, तो बेचने लगे तो ले लेंगे, बदबू आएगी, गंदा होगा। शैतान आज कई फिल्थी चीज़ों को क्या खूबसूरत करके दुनिया को दंगा करके फिर आ रहा है। आज भी दुनिया में जो हमारे इर्द गिर्द अजीबो गरीब से स्लोगन्स आ गए, उसकी वजह शैतानी वसवास है। फितरत के रास्तों को छोड़कर लोग गैर फितरी तरीकों पे अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी करते, ये फिल्थ है। तो लिहाजा ये सूरत पढ़ते वक्त भी अपने इर्द गिर्द के सारे शर जहन में लाइए, जिसमें आज के दौर का शर आप सब जानते हैं क्या। पहले तो औरत मर्द के बीच में ताल्लुक टूटे, आउट ऑफ वेड लॉक ताल्लुकात बने, यारी दोस्ती तो हमने भी लफ सुन लिए थे, गर्ल फ्रेंडशिप बॉय फ्रेंडशिप भी फिल था, और अब तो हदें ही ख़त्म हो गई। तो अपने बच्चों को इन सारे फितनों से बचाने का सोच कर ये दुआएं मांगा करें रात को सोते वक्त, मांगिएगा ज़रा मिलके सूरत नास ठहर ठहर कर।
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
अब इन दोनों सूरतों को इकट्ठा पढ़ें और आप सब सुनते वक्त वो 11 चीज़ें काउंट करें जिनका इसमें जिक्र है, यानी 11 आयतें हैं असल में, और शैतान की 11 गिरहों को खोला था इन दोनों सूरतों ने। आप एक एक आयत पे गौर कीजिए।
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
جی، آپ نے ان دونوں کا ربط محسوس کیا؟ قرآن پاک کا کوئی بھی مقام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ ان دونوں کا تقابل کریں نا، ایک طرف سورۃ فلق اور ایک طرف سورۃ ناس، سورۃ فلق میں اندھیرے کے غلبے یعنی آفات اور مصائب، جادو کرنے والی عورتیں اور حاسدین کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اس کے برعکس سورۃ ناس میں صرف ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور وہ ہے وسوسہ۔ سورۃ فلق میں نفس اور بدن کے شر سے سلامتی مطلوب ہے، اور سورۃ ناس میں شر کی پناہ سے دین کی سلامتی مطلوب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کا ضرر دنیا کے ضرر سے زیادہ اہم ہے۔ امید ہے کہ یہ نقطہ آپ کو یاد رہے گا۔ فلک میں جسمانی بیماریاں، جادو ٹونے، نظر بد، حسد کی نگاہ، جبکہ سورۃ ناس میں اندر کے وسوسے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ظاہر اور باطن کی ساری بیماریوں سے اور ساری آفات سے محفوظ رکھے۔ اور یہ دونوں تینوں جو بھی چیزیں ہوئیں، یا آپ نے پہلے سے یاد کی ہوئی ہیں، کوئی چیز نئی نہیں ہے،